प्रिय भातृजन, मेरे भाइयों बच्चों, आज 26 जून 2020 आपके लिए मंगलमय हो। आज मैं आपको श्री महाराज जी के कुछ अगले प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उनको सुनकर, उन पर चल करके हम भी मोक्ष के मार्ग को अपना सकते हैं। अभी पिछले प्रसंग से आगे मैंने दयानंदनी लिखी है, डेली डायरी में जो लिखती थी उसी को पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। फरवरी 1984 से जून 1984 तक कर लिखा है ये। 20 फरवरी 1984 को महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। फलाहार नमकीन, आलू और साबूदाना की खीर बनाई गई। अंतरंग भक्तों ने सब कार्य करने में मदद की। मार्च महीने में बसंत पंचमी के दिन श्री महाराज जी ने मंदिर के साथ वाली जगह में धर्मशाला के निर्माण हेतु नींव रखवाई और भविष्य में जनहित के लिए धर्मशाला बनाने का दृढ़ निश्चय किया। 22 अप्रैल को श्री राम नवमी के दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और जनता जनार्दन के आगमन का विराट दृश्य देखकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। इस बार भक्तों की भीड़ का पारा बार नहीं था। बाल गोपाल शिक्षा केंद्र के बालक बालिकाओं ने सेवा कार्य में सहयोग देकर श्री महाराज जी के आनंद को दुगुना किया। श्री महाराज इन बालक बालिकाओं को सेवा करते देख स्वयं हर्षित होते और उन्हें समाज सेवा की प्रेरणा भी देते। मई जून के महीने में तीर्थ यात्रियों की भीड़ रही। 15 जून को लाहौर निवासी कुमारी चिन्ने आई। श्री महाराज जी ने 1976 में उसके प्रथम आगमन पर ही कहा था, चिन्ने बाबा का काम करोगी। चिन्ने ने आर्थिक कुछ सहयोग दिया और मंदिर के कार्य में कुछ हिस्सा लिया। इसमें श्री महाराज के पास एक आराम कुर्सी है, चिन्ने को उस पर बैठने की आज्ञा हुई और चिन्ने को बाबा के प्यार ने कुर्सी पर बैठने के लिए बाध्य कर दिया। फिर श्री महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिन्ने को सिस्टर निवेदिता बना दो। ये सुनकर चिन्ने और भी सिकुड़ गई। चिन्ने स्वभाव से ही लज्जाशील है तथा विनम्रता और सरलता की प्रतिमूर्ति है। श्री महाराज जी ने बाजार से बढ़िया चप्पल मंगवा कर चिन्ने के चरणों में पहनाई। चिन्ने की हिचकिचाहट देखते ही मैंने कहा, ये उपहार किसी किसी को भाग्य से प्राप्त होता है। चिन्ने 2 दिन रहकर लाहौर चली गई। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है और वे मंदिर निर्माण कार्य में समुचित देखभाल में लगे हुए हैं। जुलाई 10 जुलाई 1984 को गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तों ने श्री महाराज जी के सानिध्य में भक्ति पूर्वक मनाया। इस बार श्री महाराज अपने अंतिम भक्तों के विमान के पर्दे को क्षीण करने के प्रयत्न में हैं। श्री महाराज जी ने कहा, आप सभी प्रेम पूर्वक अपना अपना कार्य करो, शेष बाबा सब देख लेगा। श्री महाराज जानते थे कि उनके अंतिम भक्तों तथा कार्यकर्ताओं में अभिमान हो रहा है, अतः वे कोई न कोई निमित्त कारण ढूंढकर भक्तों के अभिमान को दूर करने की चेष्टा करते। उनका प्रयत्न एक सदगुरु की भांति होता। वे कुमार की तरह बाहर से घड़े को अच्छी तरह थोपते, परंतु भीतर से दूसरे हाथ का सहारा अवश्य रहता। किबीर के सदोई की भांति गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कुमार है तो शिष्य कुंभ है। श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अंतंग भक्तों को श्री महाराज से विशेष प्रेरणा मिली। उनकी कृपा को अनुभव करते हुए भक्त अपनी अपनी स्थिति में जाकर अपना प्राण कर्तव्य करने लगे। 25 जुलाई की बात है कि सड़क पर एक जीप रुकी। एक युवक सन्यासी और कुछ गृहस्थ जीप से उतर सीढ़ियां चढ़कर मंदिर दर्शन के लिए आए। सब मंदिरों के दर्शन करके युवा सन्यासी श्री महाराज जी से अंग्रेजी में बात करने लगा ही था कि श्री महाराज जी ने कहा, मैं हिंदू हूँ, कृपया हिंदी में बातचीत कीजिए। युवा सन्यासी बहुत प्रभावित हुआ। उसने हिंदी में पूछा, आपका रामकृष्ण मिशन से क्या संबंध है? श्री महाराज जी ने ये बताया कि कोई संबंध नहीं। वह बोला, मैंने 3 वर्ष वायु सेना में नौकरी करके त्याग पत्र दे दिया और बेलूर मठ में सन्यास की दीक्षा ली है। साथ वाली महिला ने बताया कि सन्यासी उसका भाई है। श्री महाराज जी ने प्यार से भोजन करवाया। श्री महाराज जी को हिंदू होने का गर्व था और वह हिंदू की परिभाषा इस प्रकार करते थे, हिंदू वह है जो मानवता के नाते सभी प्राणियों से प्रेम करे और जिस देश और जाति में जन्म लिया है उसके लिए बलिदान हो जाए। उनका कहना था कि हमें विश्व की विभिन्न भाषाएं सीखनी चाहिए, सब धर्मों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा और अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। जुलाई का महीना है, शिव मंदिर के रास्ते का निर्माण हो रहा है। श्री महाराज स्वयं रास्ता बनाने में कुलियों की सहायता करते हैं, जिससे उन्हें थकावट हो जाती है। उन्हें मंदिर का कार्य करने में अति आनंद अनुभव होता है। कभी वे कुर्ता भी उतार देते हैं और सफेद धोती पहन कर लटकते से चलते हैं और स्वयं से ही कहते हैं, ये अपने शरीर की ओर इशारा करके कहते हैं, ये हिल हिल कर चलता है, पहले कैसे चलता था? फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं, शायद जाने का समय आ गया है। इस प्रकार श्री महाराज अपने अंतिम समय की सूचना भी दे रहे हैं। 28 जुलाई को श्री रामदास सूद धर्म पत्नी शकुंतला सहित मंदिर आए और दोनों हाथ जोड़ अपने निवास स्थान अखाड़ा बाजार में पर 30 जुलाई को महामृत्युंजय यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए श्री महाराज जी को निमंत्रण दिया। श्री महाराज जी रामलाल से सखा भाव रखते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने श्री रामलाल को वचन दे दिया, बाबा अवश्य आएगा। 30 जुलाई को श्री रामलाल के सुपुत्र कुमार धीरज गाड़ी लेकर लेने आ गए। श्री महाराज ने प्रातः ही एक बड़ी बाल्टी हलवा बना रखा था और वे मुझे लेकर साथ में प्रसाद का लेकर सीढ़ियां उतरे और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी श्री रामलाल के निवास के मुख्य द्वार पर खड़ी की गई ताकि भीतर पहुंचने में आसानी रहे। कमजोरी बहुत है, 2-4 कदम ही चले थे कि थकावट हो गई। जी स्वामी ने शीघ्र ही उन्हें बिस्तर में लिटा दिया। वो घर की भक्त महिलाओं ने उन्हें फलों का रस पिलाया तथा उनके आराम को ध्यान में रखकर उन्हें एकांत में रखा। फलों के अल्पाहार के पश्चात उन्हें सुला दिया गया। दूसरे कमरे में हवन हो रहा था, रसोई घर में भोजन पकाया जा रहा था। पूर्णाहुति के पश्चात श्री महाराज यज्ञशाला में आए। श्री रामलाल ने उठकर उनका अभिनंदन किया। श्री महाराज जी ने दाएं हाथ के अंगूठे से हवन की भस्म लेकर रामलाल के माथे पर तिलक लगाया एवं गदगद हो गए, भगवानो महामृत्युंजय श्री शिव भगवान श्री राम तामलाल के यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हो गए हो और वरदान दे रहे हो। ये दृश्य देख हम सब बहुत ही आनंदित हुए। इसके पश्चात श्री महाराज अखाड़ा बाजार में कुछ भक्तों श्री राम शीतल लाला गुलशन के घर भी गए। वहाँ से लौटने पर श्रीमती गोपेंद्र उन्हें अपने घर ले गई। उनके घर के साथ ही गोपेंद्र की चाची का घर है, जो आजकल बीमार है, सांस की तकलीफ है। वे कभी कभी मंदिर में भी आती थी, इसलिए उनकी खबर लेने श्री महाराज चाची के कमरे में गए। चाची ने नमस्कार किया तो श्री दयालु श्री महाराज ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा, माताजी, सांस सांस में भगवान का नाम लो, यही सच्चा धन है। चाची जी ने कहा, जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, महाराज जी, बड़ी तकलीफ है, मेरा शरीर पीला पड़ गया है। श्री महाराज जी ने कहा, माँ, अधिक धन जोड़ रखा है, इसलिए प्राण उसमें फंसे हैं, खाली आए हैं, खाली चले जाएंगे। बाबा तो अपने पास कुछ नहीं रखता, धन का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तब श्री रामलाल जी ने एक कहानी सुनाई। एक कहानी इस प्रकार है, एक फकीर बड़े ठाठ बाट से रहता था। उसे देखकर जापान के बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसा फकीर है। बादशाह ने सोचा कि फकीर से पूछा जाए उसमें और बादशाह में क्या अंतर है। फकीर से पूछने पर उसने कहा, अगर हम दोनों के ठाठ बाट में अंतर देखना है तो आओ मेरे साथ। फकीर और बादशाह दोनों साथ साथ चलने लगी। चलते चलते रात होने लगी तो बादशाह ने कहा, बाबा जी, फकीर जी, अब लौट चलिए। फकीर बोला, वापस किस लिए जाना है, पीछे हमारा रखा ही क्या है। इस पर बादशाह ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं, मेरा साम्राज्य है, प्रजा है, और भी बहुत कुछ है, उसे कौन देखेगा। फकीर ने कहा, ये ठाठ बाट मेरा और आपका नहीं है। फकीर ने फिर कहा, यही अंतर है आपके और मेरे ठाठ बाट में, आप आ सकते हैं, मैं आना सकती हूँ। श्री महाराज जी ने रामलाल की ओर देखा और हंस पड़े और फिर कहा, चलो चले। श्री राम लाल के घर से जब बाहर आए तो वहाँ एक भेड़ू बंधा हुआ था और वो काफी बड़ा हो चुका था। ये भी माता देवी अपने घर में वास्तु देव के लिए भेड़ू हमारे घर में पाला जाता था। छोटा सा मेमना लाते थे, फिर जब वो बड़ा हो जाता था 5-7-8 साल का तो उसे अपने गांव की जमीन थी वहाँ उसको मंजारे को ऐसे ही दे देते थे। तो उसमें जब महाराज जी बाहर आए तो उन्होंने देखा वहाँ एक बड़ा सा भेड़ू बंधा हुआ आंगन में एक और। उन्होंने भेड़ू को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। फिर श्रीमती शकुंतला को कहा, माता जी, आप लाओ, रोटियां ले आओ। शकुंतला जी ने वो तले हुए भटूरे लाए, 2 लाए, 4 लाए, 6 लाए। फिर महाराज जी कहते, ओ लाओ, ओ लाओ। रामलाल जी देख के हंस रहे थे और मैं भी सोच रही थी, ये भेड़ू का पेट तो फूल जाएगा, भेड़ू तो खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, खाया जा रहा था, और लगभग 15-20 भटूरे उस भेड़ू ने खा लिए। फिर महाराज जी ने भेड़ू के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा, अब चलते हैं, अगले जन्म लेंगे। फिर मैं महाराज जी के साथ मंदिर आ गई और मैं ये सोचती रही कि महाराज जी ने भेड़ू से ये जो कहा, अगले जन्म मिलेंगे, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या अभिप्राय होगा, क्या महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं या भेड़ू के लिए कह रहे हैं। रात भर में इसी सोच में जब भी नींद जाती तो इसी प्रसंग के विषय में सोचती, सोचते सोचते प्रातः काल हो गया, लेकिन मुझे कुछ विशेष उत्तर नहीं मिला। इसका उत्तर ऐसे है कि दूसरे दिन सुबह रामलाल जी का फोन आया, मैंने फोन उठाया, कहा, बहन जी, बात ऐसी है कि भेड़ू चल बसा। मैं क्या, कहाँ को चल बसा। फिर वो हंस पड़े, कहते, महाराज जी कल जो उसका उद्धार कर गया, उसका उद्धार हो गया, वो ना जाने कौन सी महान आत्मा थी। महाराज जी ने उसके जो दो चार साल उसने और जो खाना खाना था वो महाराज जी ने एक ही दिन में एक ही घंटे में अपने हाथों से खिलाया और उसकी मुक्ति हो गई। तो कुछ ऐसे प्रसंग है जिनके विषय में हम गहन से गहन विचार करें तो भी नहीं पता चलता कि ये अंतर्यामी भगवान के अवतार किस प्रकार जीव कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जीवों का उद्धार मनुष्य का ही नहीं किसी भी जीव पर जब उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो उसका उद्धार वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो फिर रामलाल जी जब मुझे दोबारा मिले तो उन्होंने कहा बहन जी बात ऐसी है कि भेडू ने जो अभी दो तीन सालों भटूरे खाने थे हम तो एक एक दो दो भटूरे देते थे बाकी घास खाता था लेकिन उसकी किस्मत में 20 भटूरे लिखे थे। तो महाराज जी ने बोला उन भटूरों के लिए क्यों भेडू बैठा रहेगा दिन भर बंदा हुआ बेचारा उसको इकट्ठे खिलाओ और ये जा करके कहीं और किसी घर में जन्म लेगा। हो सकता है नहीं ये सच्ची बात है कि भेड़ू अगले जन्म में जरूर मनुष्य बना क्योंकि श्री महाराज जी के हाथों से उनके कर कमलों से उसने जो अंतिम प्रसाद पाया उसे मानव योनि मिली। तभी तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तम पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा साधन धर्म मोक्ष के द्वारा यही पाई पर लोक संभाला। जब ऐसे महापुरुष भगवान के हंस अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे कार्य करते हैं जो हमें छोटे छोटे लगते हैं लेकिन वे बहुत महान होते हैं बहुत बहुत महान होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक ऐसा प्रसंग सुनाया था जब हम कलकत्ता गए थे तो हम बालीगंज से रामकृष्ण मिशन फॉर कल्चर जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला महाराज को दिखाई दिया नाली में गिरा हुआ शायद वो छटपटा के मर ही जाता लेकिन श्री महाराज जी की दया दृष्टि पन्ने से उन्होंने उठाया प्रेम किया खिलाया पिलाया तो वो भी ना जाने कहां अगले जन्म उसने मनुष्य का रूप लिया होगा। महापुरुषों के भगवान के अवतार के कर कमल जब किसी के सिर पे लग जाते हैं या वो उनको छू लेते हैं वो मनुष्य भी धन्य हो जाता है और उस मनुष्य का या जीव मात्र का उद्धार भी हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए गीता में जय माता दी।